Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में, जो कि आपका पसंदीदा कार्यक्रम है। लगातार बोल पे हमारी चर्चा हो रही है और बहुत ही सुंदर चर्चा है, क्योंकि ये जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। एक राजा को अपना हाथी बहुत प्रिय था। जब हाथी बूढ़ा हो गया तो उन्होंने उस हाथी को प्रजा को दे दिया और कहा कि इसकी बहुत अच्छी सेवा करना, ये मरना नहीं चाहिए, और ये जो कोई भी इसके मरने की सूचना मुझे देगा उसे भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब पूरी प्रजा जुट गई, उसकी सेवा शुश्रूषा किया गया कि किसी भी प्रकार से बचाया जाए इस हाथी को, ये मरे ना। लेकिन अब ये तो निश्चित ही है, जो इस संसार में आया है, चाहे मनुष्य है चाहे प्राणी है, उसे जाना ही है। हाथी एक दिन मर गया। अब सारी जो प्रजा थी अब ये सोच में पड़ गई कि अब कैसे राजा को सूचित किया जाए कि भाई जो हाथी है वो मर गया, क्योंकि जो जाएगा राजा को सूचना देने उसको भी अपने प्राण देने पड़ेंगे। अब एक बुजुर्ग व्यक्ति था, बड़ा ही बुद्धिमान था। उसने कहा कि भाई ये बीड़ा मैं उठाता हूँ, राजा तक ये सूचना मैं पहुँचाऊँगा। राजा के पास वो बुजुर्ग व्यक्ति गए और उन्होंने कहा कि महाराज, जो आपका हाथी था वो तो ना अब खाता है, ना पीता है, ना ही कुछ बोलता है, कुछ भी हलचल नहीं करता है। तो राजा ने कहा, क्या वो मर गया है? तो उस वृद्ध ने कहा कि महाराज, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। तो कहने का भाव बहुत ही युक्ति से अपनी बात उस वृद्ध ने राजा तक पहुँचा दी, और राजा को ये कहना पड़ा कि क्या वो मर गया है। वास्तव में कई बार अपनी वाणी का ऐसा संयमित प्रयोग करने से हम बहुत सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। अब तक की चर्चाओं से आपने भी ये चीज़ बहुत गहराई से सीख लिया होगा कि वाणी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करें। आइए आज की इस कड़ी में प्राता जी का अभिनंदन करते हैं। प्राता जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। लोगों के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जब वाणी पे हमारी चर्चा हो रही है। तो एक फ़ोन कॉल जो आया प्राता जी, उसमें उन्होंने अपना प्रश्न यही रखा कि वाणी को लेकर के हम बहुत ज़्यादा कहते तो हैं कि वाणी पे ध्यान रखें, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे लोगों के द्वारा बहुत सारी बातें हमारे लिए कही जाती हैं, हमारे मुख पे कही जाती हैं, वो बात बहुत कठिन हो जाता है, उस बात को सुनना और सहना। और उन्होंने ये बात भी कही कि यदि हम उस समय उन्हें तपाक से कुछ बोल देते हैं तब बात रफा दफा हो जाती है, लेकिन यदि हम चुप रहते हैं, सोचते हैं कि हम अपनी वाणी को संयमित रखें, तो वो बात बढ़ती चली जाती है।
ठीक है, ये भी एक तरीका है कि अगर तपाक से तब कुछ बोल दिया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बस यही है कि अपनी मन की स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। लेकिन मैं इसमें और कुछ जोड़ना चाहूँगा। देखिए, एक बार बोल दिया, जहाँ तहाँ बोलना पड़े, जहाँ तहाँ ऐसा सुनना पड़े, तो फिर बात थोड़ी भारी होने लगती है। बहुत अच्छा एक ईश्वरीय महावाक्य सब याद रखेंगे, जो आत्माएँ स्वमान में रहती हैं उनके पीछे सम्मान परछाई की तरह चलता है। अगर हम अपने स्वमान को बढ़ा दें, जो हमारे ईश्वरीय ज्ञान का, हमारी राजयोग की साधना का एक इम्पोर्टेंट पहलू है, यदि हम उसे बहुत बढ़ा दें तो सभी लोग धीरे धीरे हमारा सम्मान करने लगेंगे। यदि हम इस फीलिंग में रहने लगे, मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, तो पहले हम इस फीलिंग में ज़्यादा रहें, इसे एक्सेप्ट कर लें, तो फिर जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे उसका इफ़ेक्ट दूसरों पर बहुत अच्छा पड़ता है। दूसरा व्यक्ति ऐसा वैसा बोलने का जैसे साहस ही नहीं करेगा, उसकी वाणी रुक जाएगी हमारे वाइब्रेशंस को देखकर। जैसे कोई बहुत क्रिमिनल व्यक्ति किसी सज्जन आदमी के घर पहुंचे जिसके चेहरे पर बहुत शीतलता, बड़ा तेज हो, तो वो क्रिमिनल व्यक्ति उसको देखते ही अपना सब कुछ भूल जाएगा। ये वाइब्रेशंस का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो यदि हम स्वमान का अभ्यास करते हैं तो एक तो ऐसी सिचुएशन हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी, और जैसा इन्होंने कहा, अगर हम तपाक से जवाब दे दें उसमें भी अगर हमारा स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास होगा और हम उन्हें ऐसा ज़रा पावरफुल जवाब देंगे तो उसका प्रभाव और गहरा होगा, और सदा के लिए वो व्यक्ति ऐसी बातें करने से बाज आ जाएगा।
मतलब समय और सिचुएशन को देख करके हमें खुद निर्णय लेना चाहिए कि कब हमें कैसे क्या बोलना है। और सचमुच ये तो मुझे लगता है कि प्रता जी, एक लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग है कि जीवन पर्यंत हमें सीखते चलना है कि किस घटना में, किस सिचुएशन में, कैसी परिस्थिति में हमें क्या क्या बोलना है और व्यक्ति को सीखते चलना चाहिए।
और मनुष्य अगर ये लक्ष्य बना ले कि मुझे सीखना है जीवन भर, मुझे अपनी बुद्धि के द्वार सीखने के लिए सदाई ओपन रखने हैं, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ता जाएगा। और मान लो कहीं कुछ गलत बोलता भी है या लोग गलत बोलते हैं, उसमें भी हमारी कहीं गलती होती है, हम गलत जवाब दे रहे हैं, फिर दूसरा और गलत बोल रहा है, फिर हम गलत जवाब दे रहे हैं, तो इससे भी अगर हम सीखें कि इस जगह पर हमें ये बोलना चाहिए था, ये नहीं, तो अगली बार जब वो सिचुएशन आएगी तो काफ़ी अंतर दिखाई देगा।
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, मैं आपको मेल की ओर लिए चल रहा हूँ। काफ़ी सारे मेल हमारे पास आ गए हैं। पहला है प्रमोद कुमार जेना जी का, और ये उड़ीसा से लिख रहे हैं। कहते हैं कि भैया, मैं रेलवे का एग्ज़ाम देने वाला हूँ और मेरा एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। अब तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, मैं सक्सेस नहीं हो पाया हूँ। ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं कैसे सफलता प्राप्त करूँ।
क्वालिफाइड होने के बाद एक अच्छी जॉब मिल जाए तो उसकी क्वालिफिकेशन भी सफल होती है, परिवार भी बहुत सुखी हो जाते हैं, उसका गौरव भी बढ़ता है।
जी,
मैं इससे पहले एक छोटी सी बात कह दूं। आज ही एक कन्या मेरे पास आई, 10वीं क्लास में पढ़ती, थोड़ी बड़ी हो गई थी। मैं तो सोचा शायद कॉलेज में पढ़ती होगी। जब मैंने उसे पूछा कौन सी क्लास में, 10वीं में, मैंने कहा बोलो क्या तुम्हारी समस्या है। कहा नहीं, समस्या नहीं, मुझे ऐसी बात बता दो आजीवन में सफल होती रहूं। मैंने कहा कितने अच्छे विचार हैं 10वीं क्लास की लड़की के, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा निश्चित रूप से तुम्हें कदम कदम पर सफलता मिलेगी, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, निगेटिविटी बिल्कुल जीवन में आने नहीं देना। चरित्र सबसे बड़ी पूंजी है, इसको कहीं दाग न लगने देना, और देखना सफलता की ओर तुम्हारे कदम कितने तेजी से चलते हैं। वास्तव में सफलता उन लोगों को बहुत कम मिलती है जिन्होंने अपने चरित्र का बचपन से ही ध्यान नहीं रखा है। बहुत रोज़ मेरे को कई युवकों के ऐसे फ़ोन आ जाते हैं जो राजयोग के पथ पर भी आ गए 6 मास से 8 मास से, लेकिन अभी उनका कंसंट्रेशन होता ही नहीं। तो मैं पूछ लेता हूँ पहले कैसा जीवन व्यतीत किया है, तो बेचारे बता देते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं, हम बिल्कुल रास्ते से भटक गए थे, हम बुरे संग में आ गए थे। तो उसका खामियाजा उनको जीवन भर भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि एकाग्रता मनुष्य की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। चाहे वो इंटरव्यू देने जा रहा हो, चाहे कोई एग्जाम देने जा रहा हो, चाहे वो कुछ भी घर में काम ही कर रहा हो, गृहिणी हो, वो खाना बना रही है लेकिन उसका चित्र इधर उधर भटक रहा है, मन बहुत भाग रहा है, तो उसको उसमें भी मज़ा नहीं आएगा, सफल नहीं होगा, वो कुछ का कुछ करेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनको सफलता के मार्ग पर सदा आगे बढ़ना है उन्हें निगेटिविटी से, इम्प्योरिटी से, चरित्रहीनता से, जो ये गलत मार्ग युवकों के हो गए हैं, उनसे बचना चाहिए। रही बात इनकी, बहुत अच्छी है कि इनकी अभिलाषा है, जब तक इनका एग्ज़ाम आए ये रोज़ 1 घंटा राजयोग मेडिटेशन करेंगे। अवश्य इन्होंने सीखा होगा, नहीं तो ये तुरंत जाकर राजयोग की क्लासेज अटेंड करें, राजयोग सीखें। इससे परमात्मा पे भी इनका विश्वास बढ़ेगा, पॉजिटिव शक्ति भी इनके पास आएंगी, और सफलता की ओर जाने में इनको परमात्मा दुआएं भी मिलेंगी और इनके अपने मन की दुआएं भी इन्हें प्राप्त हो जाएंगी। तो एक तो ये काम इन्हें रोज करना है, दूसरा सवेरे आँख खुलते ही 7 बार ये अवश्य याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत गुड फीलिंग के साथ, केवल रटेंगे नहीं इसको, मैं हूँ सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, देयरफॉर आई एम मास्टर ऑलमाइटी, और जब मैं भगवान की संतान हूँ तो मुझे सफलता मिलेगी ही। इसको गुड फीलिंग के साथ 7 बार रोज सवेरे उठते ही करेंगे, ताकि इनका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर ले। तो ये सबकॉन्शियस माइंड एक यूनिवर्सल माइंड बन जाता है, जो उन लोगों तक पहुँचेगा जो इसके पेपर चेक करेंगे, या अगर इंटरव्यू है तो जो इंटरव्यू लेंगे, जो कंसर्न लोग हैं उनको अफेक्ट करेगा इनका सबकॉन्शियस माइंड। मान लो रेलवे में जिस पोस्ट के लिए इनका एग्ज़ाम हो रहा है उसको विजुअलाइज करें, और मैं उस चेयर पर बैठा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मुझे ये जॉब मिल चुकी है। बिल्कुल रोज़ सवेरे ये अभ्यास करने के बाद ये विजन बनाएंगे, उठते ही और सोते समय मैं वहाँ बैठा हूँ, बस ये मुझे हो गया है, इस बार मेरा सब कुछ क्लियर हो गया है। इस तरह से कॉन्फिडेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अंडरलाइन कर लेना है, कॉन्फिडेंस विल लीड टू सक्सेस। ऐसी अच्छी स्थिति बनाएंगे, अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता इनके चरण चूमेगी।
चलिए प्रमोद जी को हमारी भी बहुत सारी शुभकामना रहेगी ब्रता जी कि वो जरूर इस बार सफलता अर्जित करें। और प्रमोद जी जब आप सफल हो जाएं तो समाधान टीम के लिए मिठाई भिजवाना मत भूलिएगा। हम कामना तो हमेशा करते हैं कि टीम के लिए मिठाइयाँ लोग जरूर भेजें।
बहुत अच्छा, इनका सफल होना ही हम सब के लिए बहुत अच्छी मिठाई होगी।
बिल्कुल ब्रता जी, दूसरा मेल हमारे पास आया है, राजन साहू जी हैं, ये कहते हैं, ब्रता जी ओम शांति, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरे माइंड में व्यर्थ विचार अधिक आते हैं, मैं सेंटर जाता हूँ लेकिन मेरा मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, मन स्थिर नहीं रह पाता है, कृपया इसके लिए कोई समाधान बताइए कि मेरा मन मेडिटेशन में स्थिर हो जाए और दूसरों के सामने बोलने में मुझे झिझक महसूस होती है, इसका भी कोई समाधान बताएं। बोल पे लगातार हमारी चर्चा हुई है, उससे रिलेटेड भी
दोनों ही क्वेश्चन यूनिवर्सल हैं
जी।
यानी सारे संसार में ये समस्या है कि उनकी एकाग्रता नहीं होती। राजयोग के मार्ग पर भी जो आजकल लोग आ रहे हैं उनमें से 75% की ये समस्या रहती है कि हमारी एकाग्रता नहीं होती।
और अभी भी आपने युवाओं की भी बात कही,
तो जैसे मैंने वो उदाहरण दिया, पास्ट का लाइफ अगर बहुत अच्छा नहीं बीता है, निगेटिविटी को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फुल स्थान दे दिया है, तो वो इनको बहुत डिस्टर्ब करता है। मैं थोड़ा सा विस्तार करना चाहूँगा सभी दर्शकों के लिए, सभी राजयोग के अभ्यासियों के लिए और उन सब के लिए जो अपने विद्यार्थी काल में बहुत सफल होना चाहते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम की बात हो, चाहे इंटरव्यू की बात हो, कोई हायर कंपटीशन में देना हो, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना हो, उन सबको सफलता बहुत चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बच्चे मेहनत बहुत करते हैं और एक डर बना रहता है सफल होंगे या नहीं होंगे। तो एकाग्रता को सुंदर करने के लिए पहला ध्यान देना है, हमें एकाग्र करना है मन और बुद्धि को जी। अब मन का काम है संकल्प रचना, माइंड इज पावर ऑफ थॉट, और बुद्धि जो है ये हमारी विवेक शक्ति है, पावर ऑफ विजडम, ये थर्ड आई ऑफ विजडम भी है, तीसरा नेत्र भी है, ये जिससे हम देखते हैं किसी भी चीज़ को, हम विजुअलाइज करते हैं। मान लो अब अंधेरा हो गया है, रात हो गई है और हम आसमान में सूरज को देखेंगे, वो है नहीं है इसका प्रश्न नहीं है, इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन करना, ये काम होता है बुद्धि के द्वारा। हम किसी व्यक्ति को, दूर बैठे व्यक्ति को विजुअलाइज करते हैं, ये विजुअलाइजेशन होता है बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धि विजुअलाइज करेगी, बुद्धि विवेक शक्ति है, बुद्धि एक सुंदर पात्र है, बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है। तो इस बुद्धि को स्वच्छ करना इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको जो हमने डस्टबिन बना दिया ना बहुत लोगों ने, सबका कचरा अपनी बुद्धि में, कचरा दूसरे का अपने घर में डाल
और आजकल देखते भी बहुत सारी चीजें हैं ना,
बहुत सारी
टेलीविजन में,
नेट देख रहे, टेलीविजन पे, पत्र पत्रिकाएं बहुत गंदी है, गंदे चित्र देखे जाते हैं, फ्रेंड सर्किल में जाएंगे वो बात ही ऐसी करेंगे सारा दिन। तो सबने अपने ब्रेन को, बुद्धि को डस्टबिन बनाया हुआ है, उसमें कचरा इतना भर लिया कि उसे बदबू फैल रही है, इसलिए एकाग्र नहीं हो सकता। अब एकाग्र करना परम सत्ता पर, और इधर है बदबू, तो उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए अपने इंटेलेक्ट को, बुद्धि को प्योरीफाई करना, क्लीन करना, झाड़ू लगा दें उसमें भी, जो व्यर्थ है उसको डिलीट कर दें, बिल्कुल स्वच्छ बर्तन बना दें, इसके लिए ईश्वरीय ज्ञान है। रोज ईश्वरीय ज्ञान हमारे सेवा केंद्रों पर दिया जाता है, उसके माध्यम से पास्ट को भी भूलें जरा, जो कुछ हो गया उसको स्वमान के बल से भूला जाएगा। जितना जितना स्वमान का अभ्यास बढ़ेगा, पास्ट के जो इफेक्ट आए हुए हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे ब्रेन में, वो डिलीट होते जाएंगे। अब है मन की बात, मन को एकाग्र करना। अब मन तो इतना तेजी से भागता है कि जिन लोगों को बहुत सोचने की आदत है वो तो ये समझ भी नहीं पाते कि वो सोच क्या रहे हैं, वो क्यों सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनका मन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। देखिए नॉर्मल स्टेट में मन की स्पीड 25 थॉट्स पर मिनट है, लेकिन लोगों की ये 40 तक पहुंच जाती है पर मिनट। तो वो इतना ज़्यादा सोचते हैं कि अपने सोचने से खुद ही दुखी और परेशान होने लगते हैं। इसका बहुत अच्छा तरीका है मन को सुंदर विचार देना। हमारे मन में क्रिएटिव एनर्जी है, ध्यान देंगे हमारे सभी दर्शक, हमारे मन में क्रिएटिव एनर्जी है, तो एक सुंदर संकल्प अनेक व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने वाला हो जाएगा। और वो सुंदर संकल्प, क्योंकि इन्होंने अभी राजयोग सीख लिया है, तो वो सुंदर संकल्प मिलेंगे स्वमन से, वो सुंदर संकल्प मिलेंगे ईश्वरीय महावाक्यों में, जिसे हम ज्ञान मुरली कहते हैं। वो सुंदर संकल्प मिलते रहेंगे जब हम दूसरों को ज्ञान देते रहेंगे, हमारे यहाँ प्रदर्शनी है, उनको समझाएंगे तो नए नए सुंदर थॉट्स हमें आते रहेंगे। तो इस तरह से हम मन को नई दिशा दे सकते हैं, अपने मन को साधना पड़ेगा, ये भी एक साधना है कि मन को जहाँ जहाँ भटक रहा है, मान लो खाने पीने में भटक रहा है, तो हम संकल्प दें ये खाने पीने की चीज़ें, ये तो तुमने कितनी बार खा ली, शायद हजारों बार, क्या तुम्हारी जिह्वा तृप्त हुई? नहीं हुई। क्या तुम्हारा मन तृप्त हुआ? नहीं। अब थोड़ा थोड़ा कम कर लो, ठीक है सामने आएगी खा लो, इसका अर्थ ये नहीं कि न खाएं, लेकिन उसके पीछे ही बुद्धि चलाते रहें, उसके बारे में ही सोचते रहें, ये गलत। किसी देहधारी की तरफ बुद्धि जा रही है, अब ज्ञान मिल गया तो ये देह तो विनाशी है, तुम तो आत्माएं हो, इसका चिंतन करें, इस संसार को एक विशाल नाटक की दृष्टि से देखें, ये सुंदर ड्रामा है, कैसा सुंदर खेल चल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, किसी की विजय हो रही, किसी की हार हो रही, कोई बहुत सुखी, कोई बहुत दुखी, कैसा सुंदर खेल चल रहा है ये। ऐसे अपने को सुंदर विचार देते हुए मन को एकाग्र करेंगे। अगली बात है, हम एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, ये बहुत सुंदर शब्द है। स्वराज का अर्थ होता है मैं अपने पर राज करने वाली आत्मा हूँ, ये मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियाँ, मैं इन सब की मालिक हूँ। रोज फीलिंग दें यहाँ बैठकर, जैसे एक प्रसिद्ध बात है कि किसी भी राजा का, किसी प्राइम मिनिस्टर का आदेश तभी माना जाएगा जब वो सीट पर हैं। चीफ मिनिस्टर अगर सीट पे नहीं तो उसका कोई नहीं मानेगा
जी।
ऐसे ही हम भी, ये हमारी सीट है मस्तक भ्रकुटी, हम इस पर बैठकर यानी आत्मा होकर अपने मन को आदेश देंगे, हे मेरे मन अब भटकना बंद करो, मैं तुम्हारी मालिक हूँ, हे मेरी बुद्धि अब तुम स्थिर हो जाओ, ये उन्हें रोज कहेंगे। तुम अब सुंदर संकल्पों की रचना करो, हे मेरी बुद्धि जो तुमने अपने अंदर गंदगी भरी है निकाल दो उसको, अब स्वच्छ करो अपने को। ऐसे रोज बात करने से, ये है संकल्प क्रिएट करना। ऐसे संकल्प रोज क्रिएट करेंगे तो मन बुद्धि धीरे धीरे शांत होंगी, लेकिन इट विल टेक लिटिल टाइम, कोई ये कहे आज ही हो जाएगा ऐसा नहीं, तो धैर्यता से इसका अभ्यास करते चलें और रोज अनुभव करें। 10-10 मिनट योग अभ्यास में बैठें, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस बढ़ाएं। सिंपल प्रैक्टिस भी मैं सुना दूं, मैं आत्मा यहाँ हूँ चमकती हुई ज्योति, फॉर 10 seconds विजुअलाइज योर सेल्फ। 10 seconds हुए, फिर विजुअलाइज द सुप्रीम वन, सुप्रीम बीइंग, सर्वशक्तिवान। 10 seconds, फिर 10 seconds आत्मा को देखें, 10 seconds शिव बाबा को, 10 seconds आत्मा को, 10 seconds ऑलमाइटी को। ये प्रैक्टिस भी बहुत मदद करेगी, इससे एकाग्रता बहुत बढ़ेगी। तो जो भी नए लोग हमारे पास आ रहे हैं, युवक विशेष रूप से, क्योंकि युवकों का राज्यों की ओर आकर्षण बहुत बढ़ता जा रहा है, ये हम देख रहे हैं, और उन्हें लगता है कि अब ये स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने बहुत भटक कर देख लिया, सब जगह निराशा मिली, धोखा मिला, असफलता मिली, अब यहाँ आ जाएं, तो हमारे सभी युवकों को मैं कहूँगा इस ओर तेजी से अच्छी तरह चलें और सफलता प्राप्त करें।
चलिए, शुभ समाचार आपने सुनाया है कि अब हमारे युवा तेजी से स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, और इसी की ज़्यादा आवश्यकता है वास्तव में, क्योंकि ये एक प्रकार से नींव की तरह है, यदि नींव मजबूत होगा तो निश्चित रूप से जो मकान, जीवन रूपी मकान है, वो बहुत ज़्यादा सशक्त होगा। दो बातें मैं पूछना चाहूँगा ब्राता जी, जो आपने कही हैं, एक बात तो ये कि विशेष जैसे आपने कहा कि हम ये प्रैक्टिस करें मन को शुद्ध करने के लिए, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, लेकिन एक है कि हम डायबिटीज़ यदि मुझे है तो मैं गोली भी डायबिटीज़ की खा रहा हूँ और साथ ही मिठाई भी खा रहा हूँ, तो वो बात फिर तो जचेगी नहीं, तकलीफ मुझे हो सकती है।
जैसे डायबिटिक पेशेंट को शुगर बिल्कुल मना है
जी,
वैसे ही जो योगी बनना चाहते हैं उन्हें गंदी पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन, नेट की गलत साइट पे जाना, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, मोबाइल पर अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा बातें करना, गंदा खान पान खाना, गंदे संग में रहना, आहार विहार सब स्वच्छ करना पड़ेगा। जितना इन चीज़ों को हम कंट्रोल करेंगे उतना ही हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी होगी। अब देखिए, युवक अपने फ्रेंड सर्किल में जाते हैं, 5-10 फ्रेंड हैं, कोई कुछ बढ़ चढ़ के बात कर रहा, दूसरा कुछ बढ़ चढ़ के बात कर रहा, इसको लग रहा मैं पीछे रह गया, ये भी हिस्सा लेता है उसमें, और इस तरह व्यर्थ बढ़ता है। इसलिए जिसको योग के मार्ग पे सफल होना हो, एकाग्र होना हो, उसको अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। भले फ्रेंड्स कहेंगे सन्यासी बन गया, ये हमारे इस ग्रुप से बाहर निकल गया, इनको भी लगेगा हम आइसोलेटेड हो गए, लेकिन इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। परमात्म सुख प्राप्त करना है, अगर मन की शक्तियों को बढ़ाना है, अगर सफलता को अपना अधिकार बनाना है, तो ये सब चीज़ें सुनने के लिए तैयार रहें और इन इन चीज़ों का बिल्कुल, ऐसा मैं कहूँगा, बैन लगा दें अपने लिए। ये नहीं जैसे शुगर वाले के लिए बैन लगा दिया, भाई रसगुल्ले कितने भी अच्छे हों अब देखना नहीं।
लेकिन कई बार बहते जी ऐसा नहीं होता कि कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है?
डायबिटीज वालों को तो खास मीठा खाने की इच्छा होती है।
जी, तो वहाँ पे एक बहुत कठिनाई हो जाती है लगता है। और एक बात ये भी लगता है कि इसी को लोगों ने लाइफ मान लिया है। आजकल का जो युवा वर्ग है, घूमना फिरना और खाना पीना, ये सारी चीज़ें जो हैं यही लाइफ है, ये नहीं है तो फिर क्या इन्जॉयमेंट है, कोई मज़ा ही नहीं है लाइफ का, ये उन्होंने मान लिया है। तो कैसे हम उन इस चीज़ को उन तक पहुंचाएं कि वास्तव में ये इन्जॉयमेंट नहीं है, इससे बड़ा इन्जॉयमेंट कुछ और है, शायद यदि ये समझा पाएं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि लोग इसे ही सब कुछ मान रहे हैं। और हम ये नहीं कहते कि आप सन्यासी बन जाओ पूरे, इन सब चीज़ों में ना जाओ, पिकनिक पे भी जाओ, फ्रेंड्स के साथ भी घूमो, उनका बर्थडे पार्टी है और कुछ है उसको भी इन्जॉय करो, ये सब भी है, लेकिन इसको ही सब कुछ मान लेना इसकी आवश्यकता नहीं, ये गलत अप्रोच हो जाएगी। इसे हट कर अपनी जो चीजें हैं उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एकाग्रता ही सफलता का बीज है और युवकों को सफलता बहुत चाहिए, नहीं तो अनेक युवक निराश दिखाई देते हैं। बहुत पढ़ लिया, माँ बाप ने पैसा कितना खर्च कर लिया, ये सब एंजॉयमेंट भी करके देख लिया, लेकिन जब बारी आई कि अब सफलता चाहिए तो मन की शक्तियां साथ नहीं दे रही हैं। इसलिए मन की शक्तियों को बढ़ाना, एकाग्रचित होना, इसकी भी बहुत आवश्यकता है। और जब मौका मिले ये सब एन्जॉयमेंट भी कर लेना चाहिए, उसके लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक संयम। ऐसे नहीं उसी में लगे हुए हैं, उसी में लगे रहने से जो असली चीज़ है वो छूट जाएगी।
ये संयम वाली जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा जी, मुझे लगता है कि आजकल इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। और संयम कहाँ कितना, ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है कि कहाँ पे हम संयम रखें और कितना संयम रखें। तो ये सचमुच एक सिखाने समझाने वाली बात है युवाओं को, ये कैसे आए
संयम को। इस तरह ले ले, मान लो पिकनिक है तो कोई रोज ही पिकनिक पे जाने लगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ने लगे, घर से आया था स्कूल के लिए और पहुंच गए पिकनिक में, घर से आए थे पढ़ने के लिए और पहुंच गए किसी और पार्टी में, तो ये गलत हो जाएगा। संयम माना उनको एंजॉय भी करें, लेकिन अपनी जो मूल चीज़ है, जिसके लिए जीवन है, जिसके लिए टाइम है, उसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं।
चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रताप जी, और मुझे लगता है गहराई से इस विषय को और भी समझने की आवश्यकता है। चर्चा हमारी लगातार आपके साथ इस विषय पे भी जारी रहेगी। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बात युवाओं की चल रही है और युवा काल को ये माना जाता है कि वास्तव में स्वर्ण काल है। हम मानते तो हैं कि इसी जीवन में अर्थात युवा काल में ही हमें सब कुछ करना है, इन्जॉयमेंट भी हम करें। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि KPM कल्चर आजकल बहुत फेमस हो गया है, खाओ पियो और मौज करो, इसके लिए मनाही नहीं है, बस एक M और जोड़ने की ज़रूरत है, KPMM कल्चर को फॉलो कीजिए, खाइए पीजिए मस्त भी रहिए, लेकिन साथ साथ मेडिटेशन कीजिए, ये आपके जीवन को बहुत संतुलित करेगा। जो संयम की हम बात कर रहे हैं वो संयम आपके जीवन में आ जाएगा और जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा और सफलता से परिपूर्ण हो जाएगा। तो आपका जीवन सफलता से भरा हुआ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।